Hi students, I'm back with a brand new chapter for CBSE class 10th. This is a play titled The Dear Departed, written by Stanley Houghton. Now the title of the play, The Dear Departed, suggests us that it is about our dear loved ones who have departed from us. But actually, the author Stanley Houghton has created a satire. Satire means that he is negating something using humor, using funny situations. Basically, this drama is about the relationship of children with their elderly parents. Now, what are the topics which we will cover over here? First of all, we'll talk about the author. Then we have a background of the play. Then we'll talk about the characters which are there in the play. This will be followed by an explanation of the drama. Then there'll be a summary and the question and answers. So let's get started. First of all, I'll tell you about the author. Stanley Houghton. He was born in the year 1881 at Ashton-upon-Mercy, which is a small countryside town in England, and he died in the year 1913. William Stanley Houghton was a famous English dramatist. That is, he specialized in writing dramas. He was one of the best of a group of realistic playwrights, often called the Manchester School. Now, realistic playwrights means ke jo wo plays likhte the, wo close to real life the. Unke jo topics the plays ke, wo ekdam hamari aaj ki jo rozmarra zindagi hai, usse link rakhte the. Aur jo inka group tha writers ka, uska naam tha The Manchester School. Manchester is also a town in England, and so as they all belonged to Manchester, they named their group the Manchester School. In his every play, he sought to present an idea. So, jo bhi play William likhte the, usme ek idea hota tha, jisko wo apne readers ke samne present karte the. He was a prominent member of a group of playwrights known as the Manchester School of Dramatics. Ek aur school tha dramatics ka, the Manchester School of Dramatics. Wahan par bhi sab jo playwrights the, jo dramas likhte the, wo members the, aur usme bhi William ek prominent member the. He was influenced strongly by Ibsen. Now, Ibsen is another very famous writer. He also wrote plays. And William Stanley Houghton inse bahut zyada impressed the aur unki writings inse influenced thi. His plays are set locally in Northern England. Zyadatar William ke jo plays hai, unki jo setting hai, yani ke jo background hai, jo sab characters hai, wo sab Northern England ke hi hai, but they represent universal aspects of human nature. Par jo unke plays hai, wo universally applicable hai, kyunki usme wo baat karte hai human nature ki. To students, human nature to har jagah same hoti hai. Isliye जो प्लेज लिखे हुए हैं विलियम ने वो भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब लोग उनको पढ़ सकते हैं. Houghton left his office job in the year 1912 to become a full-time dramatist and moved to London. Here he became part of the city's dramatic and literary culture. The following year he moved to Paris, where he started to write a novel entitled Life. Now, here we have the great works by Stanley Houghton. One of his famous book is Hindle Wakes, this one. And the other work done by him are Younger Generation and many more such works. Now, here I have the background of the drama. The Dear Departed is a satire that criticizes the peripheral relationships and showy love between parents, siblings and children. So basically, ye jo play hai, ye baat karta hai parents, siblings aur bachchon ke relationship ke baare mein. Siblings means brothers sisters, बहन भाइयों का आपस में जो प्यार है, जो relationship है, उसकी बात होगी यहाँ पर. Now satire means that you are negating something, you are criticizing something, but in a funny and humorous way. Peripheral का meaning है superficial, artificial. तो जो relationships हैं parents के अपने बच्चों के साथ और बहन भाइयों के, वो होने तो चाहिए बहुत ज्यादा real, बहुत ज्यादा close. पर कैसे वो इतने सुपरफिशियल होते हैं, इतने आर्टिफिशियल, इतने दिखावे से भरे हुए हैं, और उनका आपस में जो लव है वो भी सिर्फ बाहर बाहर से है, दिखाने के लिए है, उसकी बात करेंगे हम इस प्ले में. दो द टाइटल इटसेल्फ अपीयर्स टू बी एन इमोशनल वन, इट सून बिकम्स क्लियर दैट द डियर डिपार्टेड इज नॉट सो. तो जहां तक ये जो टाइटल की बात है द डियर डिपार्टेड, इससे तो हमें पता लगता है कोई बहुत लव्ड वन है जो छोड़ के चला गया है, उसकी बात होगी यहां पर. बट इट इज नॉट सो. व्हाई इट इज नॉट सो वील कम टू नो एज वी रीड द प्ले. द प्ले वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन मैनचेस्टर इन द ईयर 1908 इन विच हॉटन सटायराइजेस मीन्स टू मेक फन ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज इन द ब्रिटिश मिडिल क्लास. डिग्रेडेशन का मतलब है डिक्लाइन टू अ लो, नीचे गिर जाना. तो ये जो प्ले है ये सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि दिखाया गया था मैनचेस्टर में इन द ईयर 1908, और इस प्ले में हॉटन मजाक उड़ाते हैं नीचे गिरी हुई अपने लेवल से. कोई बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है जब क्या चीज गिर गई, मॉरल वैल्यूज, कहां पर, ब्रिटिश मिडिल क्लास की फैमिलीज में. Now I'll talk about the important characters which you will come across in the play. The important characters in the play are the grandfather whose name is Abel Merriweather, his daughters Mrs. Amelia Slater and Mrs. Elizabeth Jordan, their husbands Henry Slater and Ben Jordan, Amelia and Henry Slater's daughter Victoria Slater. Now I'll talk about all of them one by one. Abel Merriweather, who's the grandfather of Victoria. Mr. Merriweather is over 70. He is bright and vigorous, with a twinkle in his eye. Vigorous means he is very strong according to his age. And twinkle in his eye means that he is very lively. Bahut hi zinda dil insaan hai. He believes in eating, drinking and being merry. He is frank and straightforward. He takes the wise decision of disowning his children and start making his life more comfortable by remarrying at the age of past 70. अब जो Abel Merriweather है बहुत जिंदा दिल इंसान है, वो अच्छा खाना खाने, ड्रिंक करने और खुश रहने में बिलीव करते हैं. बहुत ही ज्यादा फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वो, जो बात उनके दिल में होती है वो फट से बोल देते हैं. और वो एक वाइज डिसीजन, वाइज मींस बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, बीइंग समझदार, वो एक बहुत समझ वाला फैसला लेते हैं कि वो अपने बच्चों को डिसओन कर देते हैं, कि उनका कोई हक नहीं है Abel Merriweather की चीजों पर, और वो अपनी दोबारा से लाइफ सेटल करते हैं रीमैरी करके एट द एज ऑफ 70. वो दोबारा से किसी से शादी कर लेते हैं. नाउ वी हैव द कैरेक्टर ऑफ मिसेज Amelia Slater. शी इज द फर्स्ट डॉटर ऑफ मिस्टर Abel Merriweather. अ ग्रीडी, स्टिंजी एंड अ मटीरियलिस्टिक वुमन. तो किस टाइप की फीमेल है Amelia Slater? बहुत ही लालची है, कंजूस है और चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है. स्टूप का मीनिंग है लोअर वंस मॉरल स्टैंडर्ड्स सो फार एज टू डू समथिंग रॉन्ग. तो वो इतना गिर सकती हैं मिसेज Amelia Slater कि वो कुछ गलत काम भी कर सकती हैं, अपने मॉरल्स को इतना गिरा देंगी वो, कुछ गलत भी कर देंगी. किस लिए? अपनी ग्रीड को, अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए. शी इज अ डोमिनेटिंग वाइफ एंड अ वल्गर वुमन. Prepared to do any amount of straight talking to get her own way. So Amelia Slater is dominating wife, यानी कि वो अपने husband को dominate करती हैं, और वो बहुत vulgar, यानी कि immoral भी हैं. उनका moral standards भी बहुत low है. और वो कितना भी स्ट्रेट टॉकिंग करेंगी, यानी कि वो फ्रैंकली ब्लंटली कुछ भी बोलेंगी, चाहे वो किसी को हर्ट भी करे, पर वो अपना काम करने के लिए कुछ भी करेंगी. द नेक्स्ट कैरेक्टर इन द प्ले इज मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन. शी इज द यंगर सिस्टर ऑफ अमेलिया स्लेटर एंड द सेकेंड डॉटर ऑफ मिस्टर एबल मेरीवेदर. लाइक हर सिस्टर शी टू हैज नो फीलिंग्स फॉर हर फादर नॉर फॉर हर सिस्टर. शी इज स्टाउट, complacent woman with an impassive and an irritating air of being always right. Elizabeth Jordan stout yani ki fat hai, moti hai, complacent hai. Complacent ka meaning hai very pleased and satisfied with their own achievements. To wo apne mein hi itni khush hain aur apne aap se bahut zyada prasann hain ki ha unhone bahut kuch kiya hai aur wo kafi successful hain. तो ऐसे जो इंसान होते हैं वो औरों को बहुत अपने से लो ग्रेड का समझते हैं और उनका एक इम्पैसिव और इरिटेटिंग एयर है. इम्पैसिव का मीनिंग है नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशन. तो ये इमोशनलेस है, बड़ी ही कोल्ड हार्टेड स्टोन हार्टेड टाइप की फीमेल है और इरिटेटिंग भी है क्योंकि वो हमेशा ये सोचती है कि वो हमेशा सही है. द नेक्स्ट कैरेक्टर विच आई विल टॉक अबाउट इज हेनरी स्लेटर. Henry Slater is Amelia's husband and is far more scrupulous than any other person in this play. Scrupulous ka meaning hai extremely honest. Henry Slater is play mein sabse zyada honest yani ke sacche hain. He is more sensible than the other characters of the play. Hence, he gives the logical suggestions while talking about the obituary notice to be given in the paper. He is a hen-pecked husband. Now, Henry Slater सबसे ज्यादा समझदार हैं. इसलिए वो बात करते हैं जब न्यूज़पेपर में नोटिस देना है डेथ का तो वो उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या क्या कुछ लिखना चाहिए. पर वो उनमें एक नेगेटिविटी है, वो क्या है, ही इज अ hen-pecked husband. Hen-pecked means he is dominated and ordered about by his wife. तो जो हेनरी स्लेटर है वो अपनी वाइफ अमेलिया स्लेटर से लो होके रहते हैं. अमेलिया उनको डोमिनेट करती है और इधर उधर ऑर्डर करती रहती है. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज बेन जॉर्डन. ही इज द हस्बैंड ऑफ एलिजाबेथ एंड ही इज अ जॉली लिटिल मैन विद अ चर्पी वॉइस. अकस्टम्ड टू बी ह्यूमरस बट एट प्रेजेंट ही इज ट्राइंग टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द रिग्रेटेबल ओकेजन. बेन जॉर्डन कैसे हैं? उनकी आवाज बड़ी चियरपी है, चेयरफुल है और वो बहुत ज्यादा ह्यूमरस हैं, यानी कि सबको हंसाते रहते हैं. पर अभी वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को चुप रखने की, अपने आप को कंपोज रखने की, क्योंकि एक दुख का ओकेजन है. रिग्रेटेबल मीन्स सैड. तो जैसे कि एक दुख का मौका है तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर. नाउ वी विल टॉक अबाउट विक्टोरिया स्लेटर. Victoria is a girl of 10 years. She is an obedient child. Obedient means वो अपने parents का कहना मानती है. She is very fond of her grandfather and she has genuine feelings of love towards him. She is a precocious child. The presence of this young girl in the play comes as a whiff of cool breeze in the stuffiness generated by the adults scheming, quarrelling and scrupulosity. Now here, Victoria is a very good girl. She is obedient. वो अपने parents का कहना मानती है और वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है. उसके दिल में उनके लिए सच्ची feelings है प्यार की. She is a precocious child. Precocious means she has developed certain abilities or inclinations at an early age than is usual or expected. So we can say that she is very mature for her age. वो बहुत ज्यादा समझदार है. The presence of this young girl in the play comes as a whiff of cool breeze. Whiff of cool breeze means ke thandi hawa ka jhonka. To वैसे इस play में बहुत ज्यादा stuffiness है, बहुत ज्यादा anger है, quarrelling है, negativity है, पर Victoria है जो वो एक ठंडी हवा का झोंका है. Scrupulosity का meaning है guilt about moral or religious issues. तो जो adults हैं Victoria के घर में वो scheming है आपस में, प्लान्स बना रहे हैं एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए, चीजें हड़पने के लिए, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और वो गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि वो अपने मॉरल वैल्यूज और अपने रिलीजियस वैल्यूज को गिरा रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए. नाउ आई टॉक अबाउट द प्ले एंड एक्सप्लेन इट ऑल्सो अलोंग साइड. द सीन इज द सिटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल हाउस इन अ लोअर middle class district of a provincial town. On the spectator's left is the window with the blinds down. A sofa is in front of it. On his right is a fireplace with an armchair by it. In the middle of the wall facing the spectator is the door into the passage. तो यहाँ पर scene बता रहे हैं Stanley, जो play का scene है जहाँ पर सब कुछ होगा वो क्या है. एक सिटिंग रूम है, मींस लाइक अ लॉबी रूम, अ लिविंग रूम. छोटा सा घर है इनका लोअर मिडिल क्लास डिस्ट्रिक्ट में. अगर हम प्ले देखने जाएंगे तो हम स्पेक्टेटर्स होंगे और हमारी लेफ्ट पे एक खिड़की है, विंडो इज अ खिड़की विद द ब्लाइंड्स. ब्लाइंड्स मींस कर्टन्स विच आर डाउन. फिर एक सोफा रखा हुआ है उसके आगे और स्पेक्टेटर की राइट पे है फायरप्लेस जहां पर आग जलाते हैं. जब सर्दी होती है बहुत ज्यादा तो लोग फायरप्लेस यूज करते हैं, वहां पे वुड में आग जलाकर थोड़ा रूम को वार्म अप करते हैं और फायरप्लेस के साथ एक आर्म चेयर रखी हुई है. पीछे की जो वॉल है उसके मिडल में स्पेक्टेटर के बिल्कुल सामने एक दरवाजा है जो आगे पैसेज में जाता है. टू द लेफ्ट ऑफ द डोर अ चीप शैबी chest of drawers. To the right, a sideboard. In the middle of the room is a table with chairs round it. Ornaments and a cheap American clock are on the mantelpiece. In the hearth, a kettle. By the sideboard, a pair of gaudy, new carpet slippers. वो कह रहे दरवाजे की लेफ्ट साइड पे एक cheaps. Cheap means घटिया, सस्ता सा, और shabby means worn out. चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है. चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स इज समथिंग लाइक दिस. एंड उसकी राइट साइड पे क्या है, एक साइडबोर्ड. साइडबोर्ड भी एक बड़ा सा ऊंचा सा डब्बा होता है जिसके ऊपर एक शेल्फ है सामान रखने के लिए. इन द मिडल ऑफ द रूम इज अ टेबल विद चेयर्स अराउंड इट. सो रूम के बिल्कुल सेंटर में क्या है, एक डाइनिंग टेबल है जिसके साइड पर चेयर्स रखी हुई है. ऑर्नामेंट्स एंड अ चीप अमेरिकन क्लॉक आर ऑन दी मैंटल पीस. ये है मैंटल पीस, फायर प्लेस के ऊपर की जो शेल्फ होती है इसके ऊपर कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ डेकोरेटिव चीजें हैं और एक अमेरिकन क्लॉक पड़ी हुई है. और इन द हर्थ अ केटल. हर्थ मीन्स ये जो फायर प्लेस के बीचों बीच यहां पर एक केटल रखी हुई है. बाय द साइड बोर्ड अ पेयर ऑफ गॉडी न्यू कार्पेट स्लिपर्स. गॉडी मीन्स समथिंग विच इज वेरी ब्राइट एंड शोई. तो साइडबोर्ड है जो उसके साथ यहां पर नीचे एक स्लिपर्स का पेयर रखा हुआ है जो कि नई है, बहुत ज्यादा गॉडी है यानी कि बहुत चमकीली सी है. द टेबल इज पार्टली लेड फॉर टी एंड द नेसेसरीज फॉर द मील आर ऑन द साइडबोर्ड एज ऑल्सो आर कॉपीज ऑफ एन इवनिंग पेपर एंड ऑफ टिटबिट्स एंड पियर्सन्स वीकली. तो बता रहे हैं कि जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर चाय नाश्ता लगाया हुआ है और कुछ जो नेसेसरी सामान है वो साइडबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है और साइडबोर्ड पर पड़ी हुई है कॉपीज इवनिंग पेपर की, न्यूज़पेपर की और टिटबिट्स की. टिटबिट्स क्या है, अ ब्रिटिश वीकली मैगजीन फाउंडेड बाय जॉर्ज न्यूनेस इन 1881 विच वॉज इन मास सर्कुलेशन इन इंग्लैंड. तो एक बहुत ही पॉपुलर वीकली मैगजीन है टिटबिट्स, वो पड़ी हुई है. एंड पियर्सन्स वीकली. पियर्सन्स वीकली क्या है, अ ब्रिटिश वीकली मैगजीन फाउंडेड बाय सर साइरिल पियर्सन इन 1890. सो पियर्सन्स वीकली भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश वीकली मैगजीन है. तो टिटबिट्स और पियर्सन्स वीकली दोनों मैगजीन्स हैं बहुत पॉपुलर, वो भी इस साइडबोर्ड पर पड़ी हुई हैं. टर्निंग टू द लेफ्ट थ्रू द डोर टेक्स यू टू द फ्रंट डोर. टू द राइट Upstairs. In the passage, a hat stand is visible. अब वो कहते हैं अगर आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे डोर में से तो वो आपको फ्रंट डोर की तरफ ले जाएगा घर का जो मेन डोर है, और अगर आप राइट मुड़ जाएंगे तो स्टेयर्स आ जाएंगी ऊपर जाने के लिए। और जो ये पैसेज है वहां पर एक हैट स्टैंड विजिबल है। हैट स्टैंड एक ऐसी चीज है फर्नीचर की, ऐसी शेप की होती है, उसमें ऐसे हैंगर्स निकलते हैं बाहर। ज्यादातर ये फॉरेन कंट्रीज में यूज होती थी, लोग जब बाहर से घर में एंटर करते थे तो ये मेन डोर के पास पड़ी होती थी, वहां पे अपने हैट्स अपना कोट है उसको हैंग करके फिर घर के अंदर जाते थे लोग। तो ऐसा ही एक हैट स्टैंड भी विजिबल है। When the curtain rises, Mrs. Slater is seen laying the table. She is a vigorous, plump, red-faced, vulgar woman prepared to do any amount of straight talking to get her own way. अब यहाँ पर स्टैनली बता रहे हैं when the curtain rises. Now as this is a play, it can be enacted upon. स्टेज के ऊपर भी इसको लोग एक्ट करते हैं, बच्चे इसको प्रेजेंट करते हैं, और तब जब स्टेज पर कर्टन राइज होता है तो जो अब तक मैंने आपको सीन बताया है वो प्रिपेयर्ड होता है, तैयार होता है। और तब जब कर्टन राइज होता है तो क्या दिखते हैं, एक फीमेल है जो कि है मिसेस स्लेटर, वो टेबल ले कर रही है। और वो कैसी है, शी इज विगरस प्लम्प मींस मोटी, रेड फेस्ड मींस उनका फेस है पूरा मेकअप से भरा हुआ है, वल्गर वुमेन है, बहुत ही इमोरल टाइप की फीमेल है, और वो कितनी भी ज्यादा ब्लंटली बिहेव करेगी अपना काम कराने के लिए। She is in black, but not in complete mourning. उन्होंने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है पर वो कम्प्लीटली मॉर्निंग में नहीं है। मॉर्निंग मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ सोरो फॉर समवन्स डेथ। तो यहाँ पर स्टैनली ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे फिर से थोड़ा ह्यूमर है, वो कह रहे हैं ऑल्दो उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए जिससे पता लगता है कि वो ग्रीफ में है, वो दुख में है, पर वो कम्प्लीटली दुख में नहीं है क्योंकि सच में उसको कोई दुख नहीं है किसी की डेथ का। शी लिसन्स फॉर अ मोमेंट एंड देन गोज टू द विंडो, ओपन्स इट एंड कॉल्स इन टू द स्ट्रीट। तो यहाँ वो खिड़की पे जाकर कुछ सुनती हैं और फिर बाहर कुछ बोलती हैं स्ट्रीट में। स्ट्रीट मीन्स गली। मिसेस स्लेटर शार्पली, विक्टोरिया विक्टोरिया डू यू हियर, कम इन विल यू। Mrs. Slater closes window and puts the blind straight and then returns to her work at the table. Victoria, a precocious girl, often dressed in colors, enters. तो अब यहाँ पर क्या होता है, Mrs. Slater जो window पे गई थी street में आवाज लगाती है अपनी बेटी को sharply, तो बड़ी ही तीखी आवाज में चिल्ला के scream करके वो बोलती हैं अपनी daughter का नाम दो बार, Victoria, Victoria. और वो कहती है उसको डू यू हियर मी, जल्दी से अंदर आओ। इतना बोल के वो विंडो बंद कर लेती हैं, कर्टन वापस से ठीक कर लेती हैं और अपना काम करने लग जाती हैं। तभी विक्टोरिया जो कि एक छोटी सी गर्ल है, शी इज वेरी प्रिकॉकिस, शी इज अ मेच्योर चाइल्ड, शी हैज डेवलप्ड सर्टन एबिलिटीज और इंक्लिनेशंस एट एन अर्लियर एज देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। शी इज ऑफन ड्रेस्ड इन कलर्स, ड्रेस्ड इन कलर्स मीन्स उन्होंने एक कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है क्योंकि वो ज्यादातर कलरफुल ड्रेसेस ही पहनती हैं। अब मिसेस स्लेटर क्या कहती हैं, आई एम अमेज्ड एट यू विक्टोरिया, आई रियली एम, हाउ यू कैन गैलिवेंटिंग अबाउट इन द स्ट्रीट विद योर ग्रैंडफादर लाइंग डेड एंड कोल्ड अपस्टेयर्स, आई डोंट नो। नाउ हियर गैलिवेंटिंग का मतलब ये है गो अबाउट सीकिंग प्लेजर। मिसेस स्लेटर विक्टोरिया को डांट रही हैं। वो उसको कह रही है मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं कि कैसे तुम बाहर स्ट्रीट्स में जाकर खेल रही हो, सीकिंग प्लेजर मींस कोई ऐसा काम कर रही हो जिससे तुम्हें खुशी मिल रही है, जबकि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो ऊपर कमरे में मरे पड़े हैं और ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। आई डोंट नो, कहती मुझे समझ में नहीं आता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। बी ऑफ नाउ And change your dress before your Aunt Elizabeth and your Uncle Ben come. It would never do for them to find you in colors. Now here, Mrs. Slater tells Victoria to go fast into her room and change her dress. वो उसे कहती है अपने कपड़े change करके आओ इससे पहले कि तुम्हारी aunt है जो Elizabeth और तुम्हारे Uncle Ben वो आ जाएं। वो कहती है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुमने कलर्स पहने हुए हैं. कलर्स मीन्स वेयरिंग अ गे ड्रेस, कलरफुल ड्रेस. वो चाहती है कि तुम ब्लैक कलर के कपड़े पहन लो, जिससे ये पता चले कि तुम मॉर्निंग में हो, यानी कि तुम दुखी हो. विक्टोरिया, व्हाट आर दे कमिंग फॉर, दे हैवन्ट बीन हियर फॉर एजेस. विक्टोरिया अपनी मॉम से पूछती है वो यहाँ किस लिए आ रहे हैं, वो तो यहाँ पर बहुत सालों से नहीं आए. एजेस मीन्स मेनी ईयर्स. Now here Mrs. Slater says, they are coming to talk over poor grandpa's affairs. Your father sent them a telegram as soon as we found he was dead. A noise is heard. Good gracious! That's never them. Mrs. Slater hurries to the door and opens it. Now Mrs. Slater tells Victoria that her Aunt Elizabeth and Uncle Ben are coming to talk over poor grandpa's affair. इसका मतलब वो जो ग्रैंडफादर है विक्टोरिया के, उनकी कोई अफेयर्स हैं, उनके लिए कोई बातचीत करने के लिए आ रहे हैं. फिर वो विक्टोरिया को बताती है कि विक्टोरिया के फादर ने उनको एक टेलीग्राम भेजा था जैसे ही उनको ये पता चला कि विक्टोरिया के ग्रैंडफादर मर गए हैं. टेलीग्राम क्या होती है, ये एक कम्युनिकेशन करने का तरीका है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जो कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैसेजेस भेजने के लिए यूज होता है. गुड ग्रेशियस, ग्रेशियस मीन्स काइंड. तो वो भगवान को कहते हैं कि हम पर काइंडनेस रखना, कि अभी तक वो आ ना गए कहीं, क्योंकि उसको बाहर एक आवाज सुनाई देती है. और वो फटाफट डोर के पास जाकर देखती है, खोलती है, फिर वो कहती है नो थैंक गुडनेस इट्स ओनली योर फादर. हेनरी स्लेटर अ स्टूपिंग हैवी मैन विद अ ड्रूपिंग मुस्टैश एंटर्स. ही इज वेयरिंग अ ब्लैक टेल कोट, ग्रे ट्राउजर्स, a black tie and a bowler hat. He carries a little paper parcel. तो अब जब Mrs. Slater door पे जाकर देखती है कि कौन है, तो वो भगवान का शुक्रिया करती है, क्योंकि कौन है वो, विक्टोरिया के फादर हेनरी स्लेटर आए हैं. अब हेनरी स्लेटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर ऑथर. वो कहते हैं वो स्टूपिंग है, स्टूपिंग मीन्स ही इज बेंट फॉरवर्ड. He is a stooping heavy man. Heavy means वो थोड़े से fat है. With a drooping mustache. उनकी mustache ऐसे नीचे को गिर रही है. He is wearing a black tail coat. Tail coat एक black color का coat है जो कि formally पहनते हैं men daytime occasions के लिए. इसके round split tail होती है पीछे. ये देखिए पीछे ऐसे लंबा सा होता है और इसके पीछे से एक tail भी होती है, इसलिए इसको tail coat कहते हैं. और उन्होंने एक बॉलर हैट पहनी हुई थी. दिस इज अ पर्टिकुलर शेप ऑफ अ हैट एंड ही इज होल्डिंग अ लिटिल पेपर पार्सल. पेपर बैग पकड़ा हुआ है उन्होंने अपने हाथ में. नॉट कम येट. तो हेनरी कहते कि अभी तक वो आई नहीं. मिसेस स्लेटर कहती यू कैन सी दे हैवंट, कांट यू. तो देखिए कितनी रूडली बोल रही है वो. वो हेनरी को ये नहीं बता रही कि नहीं वो नहीं आए. कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो आए नहीं हुए अभी तक, दिखता नहीं है तुमको, कांट यू. नाउ विक्टोरिया बी ऑफ अपस्टेयर्स एंड दैट क्विक, पुट योर व्हाइट फ्रॉक ऑन विद अ ब्लैक सैश. विक्टोरिया गोज आउट. अब मिसेस स्लेटर है जो वो विक्टोरिया को डिक्टेट करती है कि जल्दी से जाओ ऊपर और फटाफट अपनी व्हाइट फ्रॉक पहनो, उसके ऊपर ब्लैक सैश पहन के आओ. और विक्टोरिया रूम में से चली जाती है. नाउ मिसेस स्लेटर सेज टू हेनरी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट्स द बेस्ट वी कैन डू टिल आर न्यू ब्लैक्स रेडी एंड बेन एंड एलिजाबेथ विल नेवर हैव थॉट अबाउट मॉर्निंग येट, सो वील आउटशाइन देम देयर. हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर बाय द फायर. गेट योर बूट्स ऑफ हेनरी, Elizabeth's that prying. She notices the least speck of dirt. अब Mrs. Slater Henry को कहती है कि मैं अभी तक satisfied नहीं हूं किस चीज से, अपनी morning dress से. तो बाकी सारी problems को छोड़कर Mrs. Slater को ये problem है, ये चिंता है कि जो उनकी morning dress है वो up to the mark नहीं है. पर वो कहती है कि ये सबसे अच्छा है जो हम एकदम से अचानक कर सकते हैं, जब तक कि हमारे न्यू ब्लैक्स रेडी नहीं हो जाते. न्यू ब्लैक्स रेडी मीन्स टिल अ न्यू ड्रेस ऑफ मॉर्निंग इज रेडी फॉर अस. तो कहती है जब तक हमारी ब्रांड न्यू मॉर्निंग ड्रेस नहीं आ जाती, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ड्रेस दैट वी कैन वेयर। और वो कहती है कि बेन और एलिजाबेथ को तो अभी तक आइडिया ही नहीं आएगा कि उनको कोई मॉर्निंग ड्रेस भी चाहिए, तो यहां पर हम उनको आउटशाइन करेंगे। आउटशाइन मीन्स हम उनसे बेटर होंगे, वी आर आउटस्मार्टिंग देम। और हेनरी आराम से आर्म चेयर में बैठ जाता है फायरप्लेस के पास, तो एकदम से उसको कहती है गेट योर बूट्स ऑफ हेनरी, उसको कहती है अपने शूज उतारो जल्दी से, मेरी सिस्टर एलिजाबेथ है वो प्राइंग है। प्राइंग मीन्स इतनी ध्यान से हर चीज को देखती है कि वो लीस्ट स्पेक ऑफ डर्ट को भी नोटिस कर लेगी। लीस्ट स्पेक ऑफ डर्ट मीन्स वेरी टाइनी पार्टिकल। तो वो कहती है कि वो नहीं चाहती उसकी सिस्टर को हल्की सी भी डस्ट या डर्ट कहीं पे दिख जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिनकी है, वो सब कुछ नोटिस कर लेती है।